एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी में उतर रहे हैं जिनका नाम मतलब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, विंस्टन चर्चिल।
हाँ बिल्कुल, चर्चिल।
और इस सफर में हमारा गाइड है मार्टिन गिलबर्ट की किताब चर्चिल अ लाइफ। ये 1991 में आई थी और ये कोई छोटी किताब नहीं है, बल्कि चर्चिल के जो आधिकारिक जीवनीकार थे उन्होंने 8 बड़ी बड़ी किताबें लिखी।
जी, 8 खंडों की विशाल जीवनी थे वो।
हाँ, उसी का ये सार है एक किताब में। बहुत कमाल का काम है गिलबर्ट का। हम बात कर रहे हैं सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल की। 1874 से 1965 तक का जीवन क्या नहीं थे वो। ब्रिटिश राजनेता, गजब के वक्ता, लेखक,
2 बार प्रधानमंत्री रहे।
हाँ, सैनिक भी, चित्रकार भी, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। मतलब हैरत होती है सोचकर।
वो एक प्रतीक बन गए हैं हिम्मत के, नेतृत्व के। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध, ब्रिटेन बिल्कुल अकेला खड़ा है।
हाँ, वो सबसे मुश्किल दौर था।
और तब वो नेता सामने आता है जो कहता है, मेरे पास देने को सिर्फ खून, मेहनत, आंसू और पसीना है, पर उनकी कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें बड़े विरोधाभास हैं, भयंकर नाकामियां हैं, और फिर वो उठ खड़े होने की गजब की क्षमता। उन्हें समझना आज भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से।
और आज क्यों जरूरी है? मैं सोच रहा था शायद इसलिए कि उनकी कहानी हमें मुश्किल हालात में लीडरशिप का मतलब सिखाती है, कैसे हार के बाद भी टिके रहना है।
हाँ, और ये भी कि किसी महान इंसान को आप सिर्फ हीरो वाले खांचे में नहीं डाल सकते, उनमें भी कमियां होती हैं, संघर्ष होते हैं।
बिल्कुल, और गिलबर्ट की किताब यही करती है ना? उन्होंने चर्चिल के निजी खतों, डायरियों का इस्तेमाल किया है।
जी, उन्हें अभूतपूर्व पहुंच मिली थी इन दस्तावेजों तक।
हाँ, तो हमें वो इंसान ज्यादा दिखता है जो उस बड़ी सी छवि के पीछे था, अपनी कमियों, अपने संघर्षों के साथ।
हाँ बिल्कुल, पर्दे के पीछे का चर्चिल।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जन्म हुआ ब्लेनहेम पैलेस में, मतलब ब्रिटिश राजघराने के नजदीक, एकदम अभिजात वर्ग में। सुनने में तो लगता है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए होंगे।
हाँ, भारी तौर पर तो यही लगता है, विशेषाधिकार तो थे ही, लेकिन घर का माहौल, खासकर माता पिता से जो रिश्ता था, वो थोड़ा अलग था। भावनात्मक रूप से काफी दूरी थी।
अच्छा।
पिता थे लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, एक प्रतिभाशाली लेकिन कह सकते हैं अस्थिर राजनेता थे। उनका करियर काफी जल्दी ढलान पर आ गया। और माँ जेनी जेरोम, वो एक अमेरिकन सोशलाइट थीं, बहुत मशहूर, खूबसूरत, लेकिन अपनी ही दुनिया में ज्यादा रहती थीं।
तो बच्चे को वक्त कहाँ से मिलता होगा?
हाँ, तो विंस्टन को जो भावनात्मक सहारा मिला वो उनकी आया मिसेज एवरेस्ट से मिला। प्यार से वो उन्हें वूम बुलाते थे, वो उनके लिए माँ जैसी थीं।
ये बात तो दिल को छू जाती है। और पिता का वो अधूरा करियर, इसका क्या असर पड़ा विंस्टन पर?
बहुत गहरा असर पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन पूरी जिंदगी एक तरह से अपने पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश करते रहे। वो चाहते थे कि उनके पिता उन पर गर्व करें।
एक अधूरी ख्वाहिश।
हाँ, और शायद इसी ने उनकी महत्वाकांक्षा को और हवा दी। साथ ही उनके एक पूर्वज थे मार्लबोरो के पहले ड्यूक, एक बहुत बड़े सेनापति।
हाँ, इतिहास में नाम है उनका।
तो उनके कारनामों ने भी विंस्टन को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्कूल में वो ज्यादा अच्छे छात्र नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, हैरो स्कूल में पढ़ाई में काफी कमजोर थे, बस अंग्रेजी और इतिहास में मन लगता था, और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत थी शुरू में, हल्की सी हकलाहट।
तो मतलब शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी हम उम्मीद करते हैं, फिर ये आर्मी ऑफिसर और युद्ध संवाददाता बनने का रास्ता कैसे खोला?
सैंडहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज में जाके जैसे उन्हें अपनी जगह मिल गई, वहां वो काफी सफल रहे। इसी बीच 1895 में उनके पिता का देहांत हो गया, इससे वो शायद और ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। फिर शुरू हुआ वो रोमांच वाला दौर, घुड़सवार अफसर बने और साथ साथ युद्ध संवाददाता भी। पैसे और शोहरत दोनों की तलाश थी उन्हें। क्यूबा गए, भारत आए, सूडान पहुंचे।
सूडान में वो ओम डुरमन की लड़ाई, उसका जिक्र आता है।
हाँ, ओम डुरमन का वो मशहूर घुड़सवार हमला, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। वो हमेशा एक्शन के नजदीक रहना चाहते थे।
और फिर आया बोर युद्ध दक्षिण अफ्रीका में, और वो किस्सा उनके भाग निकलने का, क्या वो वाकई उतना बड़ा मोड़ था उनके जीवन में?
हाँ, वो बहुत बहुत बड़ा मोड़ था, निर्णायक कह सकते हैं। वो युद्ध कवर करने गए थे पर पकड़े गए, प्रिटोरिया के युद्धबंदी कैंप में डाल दिए गए।
जी।
और वहां से उनका अकेले भाग निकलना, सोचिए, दीवार फांदना, दुश्मन के इलाके में 300 मील का सफर करना
अकेले।
हाँ, अकेले ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक घटना ने उन्हें रातों रात इंग्लैंड में नेशनल हीरो बना दिया।
अच्छा।
और इसी शोहरत ने उनके लिए राजनीति का दरवाजा खोला। 1900 में वो कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद बन गए।
लेकिन वो ज्यादा टिके नहीं कंजर्वेटिव पार्टी में। 1904 में पाला बदल लिया, लिबरल बन गए। इस पर काफी बातें होती हैं। क्या ये सिर्फ मौका परस्ती थी?
देखिए, वजह तो उन्होंने बताई कि वो मुक्त व्यापार के समर्थक थे और कंजर्वेटिव पार्टी का रुख अलग था, लेकिन हाँ, उन पर अवसरवादिता का आरोप तो लगा ही। ये चर्चिल के चरित्र की जटिलता दिखाता है। मतलब उसूल भी थे, लेकिन वो अपने लिए रास्ता बनाना भी जानते थे। ये भी पता चलता है कि वो शुरू से ही लीक से हटकर चलने को तैयार थे। अगर उन्हें लगा कि रास्ता बदलना है तो बदल लिया।
और लिबरल सरकार में उनका काम भी काफी महत्वपूर्ण रहा, खासकर एक समाज सुधारक के तौर पे। ये थोड़ा हैरान करता है उनके बैकग्राउंड को देखते हुए।
हाँ, ये दिलचस्प है। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष रहे, फिर गृह सचिव बने, और इस दौरान उन्होंने कई अहम सुधार किए, जैसे लेबर एक्सचेंज शुरू किए जो आज के जॉब सेंटर जैसे होते हैं।
अच्छा।
न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून लाए, बेरोजगारी बीमा की शुरुआत की। ये उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील कदम थे।
फिर नौसेना की कमान संभाली, एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड बने 1911 में।
जी, और वहां भी उन्होंने बड़े बदलाव किए। नौसेना को आधुनिक बनाया। सबसे बड़ा काम था जहाजों को कोयले से तेल पर शिफ्ट करना। ये बहुत दूरदर्शी कदम था।
हाँ, रणनीति के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव।
और उन्होंने नौसैनिक हवाई ताकत, मतलब नेवल एविएशन की भी नींव रखी। वो भविष्य देख रहे थे।
सब कुछ जैसे सही जा रहा था, करियर ऊपर जा रहा था, और फिर आया पहला विश्व युद्ध और डार्डनल्स। ये तो उनके करियर का सबसे काला अध्याय माना जाता है, है ना?
हाँ, डार्डनल्स अभियान 1915 का, ये वाकई एक भयानक विफलता थी। चर्चिल इस योजना के मुख्य समर्थक थे।
क्या थी ये योजना?
योजना ये थी कि तुर्की को युद्ध से बाहर करने के लिए डार्डनेल्स जलडमरू मध्य पर कब्जा किया जाए। पहले नौसेना हमला करेगी, फिर जमीनी सेना उतरेगी।
लेकिन ये कामयाब नहीं हुई।
बिल्कुल नहीं। नौसैनिक हमला नाकाम रहा। फिर गैलीपोली में जो जमीनी लड़ाई हुई वो एक त्रासदी साबित हुई। हजारों की तादाद में मित्र देशों के सैनिक मारे गए।
और इसका ठीकरा फूटा चर्चिल पर।
हाँ, उन्हें मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके करियर पर बहुत बड़ा धब्बा था। अपमानजनक विदाई थी वो।
इतनी बड़ी नाकामी के बाद कोई वापसी कैसे करता है? इसने उन्हें कैसे बदला होगा?
ये अनुभव बहुत कड़वा रहा होगा उनके लिए, लेकिन शायद इसने उन्हें कुछ जरूरी सबक सिखाए। उनकी जो एक जल्दबाजी थी, शायद वो कुछ कम हुई। उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि रणनीतिक गलतियों की इंसानी कीमत क्या होती है। उन्हें राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया गया। ये उनके वाइल्डनेस ईयर्स कहलाते हैं, राजनीतिक एकांतवास का दौर।
लेकिन वो चुप नहीं बैठे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ समय पश्चिमी मोर्चे पर सेना में भी बिताया और फिर धीरे धीरे राजनीति में वापसी की। युद्ध सामग्री मंत्री बने, फिर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री भी बने।
लेकिन फिर 1930 का दशक आया और वो फिर से अकेले पड़ते दिखे। भारतीय स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया उन्होंने।
हाँ, भारत की आजादी के वो सख्त खिलाफ थे।
राजा एडवर्ड अष्टम का समर्थन किया जब वो एक अमेरिकी तलाकशुदा महिला से शादी करना चाहते थे।
जी, उस मामले में भी वो लगभग अकेले खड़े थे।
और सबसे बढ़कर हिटलर और नाजी जर्मनी के खतरे को लेकर उनकी चेतावनियां।
हाँ।
जिन्हें उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था।
हाँ, ये दौर उनके राजनीतिक जीवन का शायद सबसे अकेला और सबसे मुश्किल दौर था। वो लगातार संसद में, भाषणों में, लेखों में नाजी जर्मनी के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे।
और सरकार,
बाल्डविन, चैम्बरलेन,
वो तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे थे। उन्हें लगता था कि हिटलर को शांत किया जा सकता है। चर्चिल को वो युद्ध भड़काने वाला खतरनाक समझते थे। उन्हें नजरअंदाज किया गया। इस अकेलेपन में वो टिके कैसे रहे? क्या चीज थी जो उन्हें चला रही थी?
शायद उनका इतिहास का गहरा ज्ञान। वो मानते थे कि वो जो देख रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले तामाशाह पहले भी आए हैं।
अच्छा।
और उनका ये पक्का यकीन कि वो सही हैं, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। वो अपने गुप्त सूत्रों से जानकारी भी जुटा रहे थे जर्मनी के बारे में।
और फिर इतिहास ने उन्हें सही साबित कर दिया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया
और चर्चिल की नाटकीय वापसी हुई। उन्हें तुरंत वापस सरकार में लाया गया, एडमिरल्टी का प्रमुख बनाया गया, वही पद जहां से उन्हें पहले हटाया गया था।
और फिर मई 1940 में वो प्रधानमंत्री बने।
हाँ, जब नॉर्वे में हार के बाद चैम्बरलेन की सरकार गिरी तो चर्चिल ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन पर देश भरोसा कर सकता था। उन्होंने खुद लिखा कि प्रधानमंत्री बनते वक्त उन्हें लगा जैसे मैं अपनी नियति के साथ चल रहा हूँ।
उनका युद्धकालीन नेतृत्व तो मतलब अद्भुत था। उनके भाषण आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। खून, मेहनत, आंसू और पसीना।
बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ ब्रिटेन के लोगों का हौसला बनाए रखा, उन्हें एकजुट किया, बल्कि दुनिया के नेताओं को भी साथ लाए। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत नेता स्टालिन, इनके साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया।
वो ब्रिटिश प्रतिरोध का चेहरा बन गए थे।
हाँ, वो हिम्मत की जीती जागती मिसाल थे।
लेकिन फिर युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन जीता और 1945 के चुनाव में वो हार गए। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है।
हाँ, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला था। शायद युद्ध के बाद ब्रिटेन की जनता एक अलग तरह का भविष्य चाहती थी। लेबर पार्टी सामाजिक सुधारों का, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का वादा कर रही थी। लोगों को शायद लगा कि युद्ध के लिए चर्चिल सही थे, लेकिन शांति के समय देश को बनाने के लिए लेबर पार्टी बेहतर है।
लेकिन चर्चिल रुके नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1946 में वो अमेरिका गए और वहां वो मशहूर आयरन कर्टन यानी लौह आवरण वाला भाषण दिया।
हाँ, फुल्टन मिसौरी में। उस भाषण ने एक तरह से यूरोप के विभाजन और शुरू हो रहे शीत युद्ध को परिभाषित कर दिया। बहुत प्रभावशाली भाषण था वो।
और फिर 1951 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने।
जी, 1955 तक वो प्रधानमंत्री रहे। इस दूसरे कार्यकाल में उनका ध्यान युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण पर था और साथ ही परमाणु युग की जो नई चुनौतियां थीं उन पर था। लेकिन अब उनकी सेहत गिरने लगी थी।
हाँ, स्ट्रोक की खबरें आती थी।
जी, कई स्ट्रोक हुए। आखिरकार उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद भी वो लिखते रहे, पेंटिंग करते रहे और 1965 में उनका निधन हो गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई।
क्या असाधारण जीवन था, इतने उतार चढ़ाव। अगर हम उनके मूल विचारों, उनके मूल्यों को समझने की कोशिश करें तो क्या चीज सामने आती है? क्या उनकी कोई एक बंदी बंधाई विचारधारा थी?
देखिए, कोई एक कठोर विचारधारा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल साफ थीं। उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की महानता और ब्रिटिश साम्राज्य की नियति पर एक गहरा, लगभग रोमांटिक विश्वास था। वो मानते थे कि इतिहास को महान व्यक्ति बनाते हैं। उनका जो अपना नजरिया था वो उदारवाद और जो परंपरावादी देशभक्ति होती है उसका एक मिश्रण था।
मतलब
वो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, व्यक्तिगत आज़ादी में, कानून के राज में, और इसी वजह से वो हर तरह की तानाशाही के कट्टर दुश्मन थे, चाहे वो जर्मनी का मिलिट्रिज्म हो, रूस का बोल्शेविज्म हो या फिर हिटलर का नाजीवाद। इन सब के वो सख्त खिलाफ थे।
ये दिलचस्प है कि उनके शुरुआती सामाजिक सुधार भी कहीं ना कहीं उनके साम्राज्यवादी नजरिए से जुड़े थे, जैसा आपने पहले इशारा किया था।
हाँ, उनका शायद मानना था कि ब्रिटेन का दुनिया में एक खास मिशन है, एक सभ्यता मिशन, और अपने देश के मजदूरों का जीवन बेहतर बनाना, उन्हें मजबूत बनाना, ये उसी बड़े मिशन का हिस्सा है ताकि साम्राज्य भी मजबूत रहे।
उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? मतलब क्या चीज उन्हें ड्राइव करती थी?
कई चीजें थीं। एक तो जबरदस्त महत्वाकांक्षा, अपने पिता से आगे निकलने की चाहत, अपने पूर्वज मार्लबोरो जैसा बनने की इच्छा।
हाँ,
दूसरा अपनी और अपने देश की नियति को लेकर एक गहरी भावना। उन्हें लगता था कि उनका जन्म कुछ खास करने के लिए हुआ है। तीसरी एक व्यवहारिक बात भी थी, पैसे की जरूरत। वो अक्सर कर्ज में रहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने इतना ज्यादा लिखा भी। लेखन से अच्छी आमदनी होती थी।
अच्छा, ये पहलू भी था।
हाँ, और आखिर में उनका ये पक्का यकीन कि उनके पास खास अंतर्दृष्टि है, खास समझ है। जैसे नाजी खतरे को लेकर उन्हें यकीन था कि वो जो देख रहे हैं वो सही है, भले ही बाकी लोग ना देख पा रहे हों।
उनके इतने लंबे और घटनापूर्ण जीवन में कई मोड़ आए होंगे। अगर हमें तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
ये मुश्किल चुनाव है, लेकिन हाँ, तीन मोड़ चुने जा सकते हैं। पहला तो मेरे ख्याल से वही 1899 का बोर युद्ध वाला किस्सा है, उनका कैद से भाग निकलना।
हाँ, वो कहानी तो जैसे उनकी पहचान बन गई।
क्या हुआ था और उसने उन्हें कैसे बदला? हुआ ये कि पत्रकार के तौर पर वो पकड़े गए थे। प्रिटोरिया के कैंप से वो अकेले भागे, दीवार फांदकर दुश्मन के इलाके से होते हुए लगभग 300 मील का सफर तय करके सुरक्षित जगह पहुंचे।
कमाल है।
इस एक कारनामे ने उन्हें एक जाने माने रईस युवा से रातों रात राष्ट्रीय हीरो बना दिया। उन्हें वो प्रसिद्धि मिली जिसकी उन्हें राजनीति में पैर जमाने के लिए सख्त जरूरत थी। उनकी एक छवि बनी एक्शन लेने वाले बहादुर इंसान की, और शायद उनमें ये यकीन और पक्का हो गया कि उनकी कोई खास नियति है।
ठीक है, दूसरा मोड़, क्या वो डार्डनेल्स की नाकामी थी?
हाँ, मैं भी वही कहूंगी। 1915 का डार्डनेल्स अभियान, एडमिरल्टी प्रमुख के तौर पर ये उनकी योजना थी और ये बुरी तरह नाकाम हुई। कॉलीपोली में हजारों सैनिक मारे गए, ये उनके करियर की सबसे बड़ी तबाही थी। उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, पद से हटाया गया, लेकिन इस नाकामी ने शायद उन्हें विनम्र बनाया, उनकी जल्दबाजी को कुछ कम किया, उन्हें रणनीतिक भूल की भारी मानवीय कीमत का एहसास हुआ।
और इसने उन्हें राजनीतिक वनवास में भी भेजा।
हाँ, जिसने उनमें वो धैर्य और लचीलापन पैदा किया जो बाद में खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत काम आया। तो ये नाकामी भी एक तरह से जरूरी साबित हुई।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मेरे विचार में वो 1930 का दशक था, जब वो तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लगभग अकेले खड़े थे।
हाँ, हिटलर के खतरे वाली बात।
बिल्कुल, सोचिए वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके थे, फिर भी संसद में बाहर लगातार हिटलर के जर्मनी के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे। सरकार, ज्यादातर नेता, जनता सब उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें युद्ध भड़काने वाला समझा जा रहा था।
लेकिन वो डटे रहे।
हाँ, वो डटे रहे, गुप्त मुखबिरों का नेटवर्क इस्तेमाल करके जानकारी जुटाते रहे, और उनका ये अकेला, अटल और अंत में सही साबित हुआ रुख ही था जिसने उन्हें जबरदस्त नैतिक अधिकार दिया जब युद्ध शुरू हुआ। इसने उन्हें एक हाशिए पर पड़े राजनेता से देश की अंतरात्मा की आवाज बना दिया। जब संकट आया तो लोगों को पता था कि एक ही व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया जा सकता है।
चर्चिल के जीवन से हम आज क्या सीख सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ खास?
सबसे पहली चीज तो है मुश्किलों का सामना करना और उनसे पार पाना। वो जिंदगी भर डिप्रेशन से जूझते रहे, वो उसे अपना ब्लैक डॉग कहते थे।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उसे संभाला, काम में डूबकर अपने शौकों से। पेंटिंग करते थे, बागवानी करते थे, यहाँ तक कि शौकिया तौर पर ईंटे भी जोड़ते थे।
अच्छा।
मतलब वो कभी खाली नहीं बैठते थे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे।
बिल्कुल, और यही उनका लचीलापन है, रेजिलियंस, नाकामी को अंत न मानना बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना। उनका वो मशहूर वाक्य, नेवर 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 गिव इन, कभी 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 हार मत मानो।
हाँ, वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने उसे जी कर दिखाया, बार बार गिरे और बार बार उठे।
और उनके चरित्र की जटिलता को भी समझना जरूरी है, जैसा आपने पहले कहा।
हाँ, वो कोई सीधा सपाट इंसान नहीं थे, रईस थे लेकिन मजदूरों के लिए सुधार लाए, रोमांटिक थे लेकिन राजनीति के दांव पेच में माहिर थे, शब्दों के जादूगर थे लेकिन युद्ध के मैदान में एक्शन से भी उन्हें प्यार था। उनका जीवन दिखाता है कि महानता अक्सर विरोधाभासों से भरी होती है।
और शब्दों की ताकत, उनकी भाषण कला, कैसे उन्होंने एक हारी हुई कौम में जान डाल दी, ये दिखाता है कि सही समय पर सही शब्द कहना, संवाद करना कितना शक्तिशाली हो सकता है।
बिल्कुल, और साथ ही अपने विश्वासों के लिए अकेले खड़े होने का साहस, चाहे आप कितने भी अलोकप्रिय क्यों ना हो जाएं, अगर आपको यकीन है कि आप सही हैं तो अपनी बात पर टिके रहना।
हाँ, ये बहुत बड़ी सीख है।
एक और बात जो मुझे अहम लगती है, एक हिंटलैंड का होना, मतलब आपका जो मुख्य पेशा है उसके बाहर भी आपकी रुचियां हों। चर्चिल के लिए ये लिखना और पेंटिंग करना था
जी।
इन शौकों ने उन्हें उन मुश्किल सालों में जो वो राजनीतिक वनवास में थे न सिर्फ व्यस्त रखा बल्कि शायद मानसिक रूप से संतुलित और मजबूत भी बनाए रखा।
बिल्कुल,
ये बहुत जरूरी होता है।
बिल्कुल, तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें,
हाँ,
तो तीन खास बातें क्या निकल कर आती हैं चर्चिल के जीवन और इस किताब से?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कह सकती हूँ। वो जो बचपन में माता पिता से भावनात्मक दूरी रही, उसने शायद उनके अंदर एक गहरी असुरक्षा पैदा की, और यही असुरक्षा शायद अनजाने में उनकी उस अथक महत्वाकांक्षा का ईंधन बनी, खुद को साबित करने की, खासकर अपने पिता के सामने। ये भावनात्मक कमी जैसे उनकी ताकत बन गई।
वक्त की राजनीतिक समस्या की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे इतिहास के एक पुराने, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न की तरह पहचाना, यूरोप पर हावी होने की कोशिश करने वाला एक तानाशाह। इतिहास की इस गहरी समझ ने उन्हें वो दूरदर्शिता दी जो उनके समय के कई नेताओं में नहीं थी। वो समझ रहे थे कि वो इतिहास की किस बड़ी कहानी का हिस्सा है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख, जो हम सबके लिए है। चर्चिल की कहानी ये साबित करती है कि कभी भी बहुत देर नहीं होती। सोचिए, वो 65 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, उस उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायर होने की सोचते हैं।
हाँ, ये कमाल की बात है।
और वो भी एक ऐसे करियर के बाद जिसमें कामयाबियों से ज्यादा नाकामियां और राजनीतिक वनवास के दौर थे। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि आपका सबसे बड़ा योगदान शायद सालों की गुमनामी या असफलता के बाद भी आ सकता है। बस हार नहीं माननी है, टिके रहना ही सबसे बड़ा गुण है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।